अब हमारा अपना परिवार था और कॉलेज भी पूरा हो गया था, तो हम जॉब करने लगे और अमर अपने पिता के बिजनेस को संभालने लगा। पर हम दोनों का ही दिल उसमें नहीं लगता था। कुछ साल जैसे तैसे कटे, फिर हम साथ मिलकर थिएटर की शुरुआत किए। पहले छोटे मोटे नाटक किया करते थे, फिर धीरे धीरे हमारी थिएटर का नाम होने लगा। काम में तरक्की के साथ ही हम दोनों ने अपनी जिंदगी में भी तरक्की की। हमारे घर शान तो अमर के घर अर्जुन का जन्म हुआ। दोनों बच्चों के बीच भी गहरी दोस्ती हो गई। उस वक्त तक हमारे पास आलीशान जिंदगी बिताने लायक पैसे नहीं थे, पर इतना हो जाता था कि तीन जनों का गुजर बसर आराम से हो जाता था। हमारे प्यार का छोटा सा आशियाना बनाया था हमने, जिसमें हम, सावित्री जी और शान रहते थे। शान शुरू से ही गुस्से के तेज थे, जबकि अर्जुन उनके मुकाबले शांत थे। जब हमने शान का एडमिशन स्कूल में करवाया तो वो जिद पर अड़ गई कि अर्जुन के साथ ही पढ़ेंगे। हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, पर अपनी इकलौती औलाद की इच्छा को पूरा करने के लिए हमने उनका एडमिशन उसी स्कूल में करवा दिया। शायद आप नहीं जानती होंगी, पर जिस स्कूल में आज अंशु पढ़ती है, उसी में शान, अर्जुन और भाई साहब का बेटा अंश भी पढ़ता था। वो यहीं रहता था क्योंकि शान में जान बसती थी उनकी, और दोनों बेटों की पढ़ाई का खर्चा भाई साहब ही उठा रहे थे। अर्जुन और शान उस वक्त 5 साल के थे जब आप दुनिया में आई। अर्जुन को छोटी बहन मिलती थी और वो बहुत चाहते थे आपको, जबकि शान चिढ़ते थे आपसे, शायद इसलिए क्योंकि आपके आने के बाद उन्हें भाभी का उतना प्यार नहीं मिल पाता था जितना पहले मिला करता था। आपके आने से दोनों घरों में खुशियां आ गई थी। आपके कदम बहुत शुभ साबित हुए थे हमारे लिए। काम में तरक्की होने लगी थी। अमर और हमारा एक ड्रीम प्ले था, और हमारी चाहत थी वो प्ले देखने पूरी इंडिया से लोग आए, और हमारी वो इच्छा पूरी भी होने जा रही थी। सालों के इंतजार के बाद हमें वो मौका मिला था जो हमें जमीन से उठाकर आकाश की बुलंदियों तक पहुंचा सकता था। उस वक्त आप 2 साल की थीं। कुछ ही दिनों बाद हमारा प्ले लाइव होने वाला था, और उस प्ले के लिए अमर ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। हमारी सालों की मेहनत रंग लाने वाली थी, जिसके लिए हम सभी खुश थे। पर हमारी खुशियों को शायद हमारी ही नज़र लग गई, और हमारी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। जहाँ ये सब कहते हुए अब तक सुभाष जी के लबों पर मुस्कान कायम थी, वहीं अब उनकी मुस्कान फीकी पड़ चुकी थी और चेहरा दर्द से सना हुआ था। उनकी आंखों में बेबसी झलक रही थी। आरवी, जो ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी, उसने परेशान निगाहों से उन्हें देखते हुए कहा, डैड आगे बताइए ना क्या हुआ था। सुभाष जी, जो अतीत की यादों में खो से गए थे, आरवी की आवाज़ सुनकर वर्तमान में लौट आए। उन्होंने आरवी को देखा, फिर कुछ पल बाद आगे कहना शुरू किया, हम उस वक्त फाइनल रिहर्सल करवा रहे थे, कुछ ही दिन रह गए थे तो काफ़ी प्रेशर था। अमर भी हमारे साथ था, फिर अचानक ही वो कहीं चला गया। हमने बहुत इंतज़ार किया उनका, सब आर्टिस्ट जा चुके थे पर हम अमर का इंतज़ार कर रहे थे। देर रात गए, अमर वहां वापस आया। इसके बाद सुभाष जी एक बार फिर अतीत की यादों में खो गए। अमर जी के लगाए इल्ज़ामों से लेकर उनके वहां से जाने तक की सारी बात उन्होंने आरबी को बताई, फिर आगे बताने लगे। फ्लैशबैक। अमर जी बेहद गुस्से में वहां से निकल गए थे। सुभाष जी थिएटर के बाहर स्तब्ध से खड़े थे। अमरजीत जी के कहे नफ़रत भरे शब्द अब तक भी उनके कानों में गूंज रहे थे। वो तो समझ ही नहीं सके कि ये सब कैसे हो गया। एक ही झटके में उनसे उनकी दोस्ती, काम सब छिन गया था। पर उन्हें दुख बस अमरजीत जी के कहे शब्दों की वजह से हो रहा था कि उन्होंने उन पर भरोसा नहीं किया। अपने दोस्त की आंखों में जहां हमेशा उन्होंने अपने लिए प्यार और विश्वास देखा था, आज वहां अविश्वास के साथ साथ नफरत भी देखी थी उन्होंने, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी। वो कुछ पल शॉक्ड से वहीं खड़े उस दिशा में देखते रहे जहां से अमरजीत जी की गाड़ी गई थी। उनकी आंखों में दर्द का सैलाब नजर आ रहा था, पर उन्होंने उसे छलकने नहीं दिया। अपने दर्द को अपने अंदर जब्त करके वो वापस थिएटर के गेट की तरफ बढ़ गए। चाबी तो उन पर रहती ही थी, तो दरवाजा खोलकर वो अंदर चले गए। भले ही अमर जी ने उन पर विश्वास ना किया हो और उन्होंने कुछ गलत ना किया हो, पर गलत हुआ तो था, और उन्हें उस धोखेबाज का पता लगाना था जिसने उनकी दोस्ती में फूट डालकर उन दोनों को बर्बाद करने की कोशिश की। पर उससे पहले उन्हें अपनी दोस्ती का फर्ज निभाना था। अमर जी ने उनसे दोस्ती तोड़ दी थी, पर वो तो उन्हें दोस्त मानते थे, तो कैसे अपने सामने उन्हें बर्बाद होते देखते रहते। इसलिए उन्होंने अपने दर्द को नज़रअंदाज कर दिया और प्ले की स्क्रिप्ट में ज़रूरी बदलाव करने लगे, जिससे ज़्यादा मेहनत भी ना लगे और प्ले पर कॉपी करने का इल्ज़ाम भी ना लग सके। 2.5-3 घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने प्ले की स्क्रिप्ट को बिल्कुल ही बदल दिया। काम ख़त्म करके उन्होंने न्यू स्क्रिप्ट की कॉपी अमर जी के केबिन के डेस्क पर रखी और अपने घर के लिए निकल गए। काफ़ी रात हो गई थी और चिंता में उन्होंने सावित्री जी को कुछ बताया भी नहीं था, इसलिए अब वो जल्दी घर पहुँचना चाहते थे। कार ड्राइव करते हुए उन्होंने कई बार सावित्री जी के नंबर पर फ़ोन किया, पर फुल रिंग जाने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी वो, इसलिए सुभाष जी कुछ परेशान हो गए थे। तब से तो अपनी चिंता में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था, पर अब उनका मन घबरा रहा था।
वो बेचैनी से तेज रफ्तार में कार ड्राइव कर रहे थे। तभी अचानक उनके फोन पर मैसेज की नोटिफिकेशन आई, तो उन्होंने कार साइड में रोकी और अपना फोन चेक करने लगे। व्हाट्सएप पर अननोन नंबर से मैसेज आया था। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने फोन बंद कर दिया और फिर से कार तेज रफ्तार में घर की तरफ दौड़ा दी। एक मोड़ पर उन्होंने कार मोड़ी, ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार गाड़ी ने आकर उनकी कार को टक्कर मार दी। दोनों गाड़ियों की रफ्तार काफी तेज थी, जिस वजह से टक्कर जोरदार हुई थी। उस सन्नाटे में भयावह आवाज गूंज थी जो किसी का भी दिल दहला दे। सुभाष जी की गाड़ी कुछ दूर तक घिसटती चली गई और फिर पलट गई। दूसरी गाड़ी तो उसी रफ्तार से आगे बढ़ गई और देखते ही देखते गायब हो गई। सुभाष जी गाड़ी में फंस चुके थे, वो बुरी तरह घायल हो गए थे, शरीर से खून पानी की तरह बहने लगा था। टांगे सीट में फंस गई थी, वो अर्ध बेहोशी की हालत में थे और अपनी बंद होती आंखों से वो जाती हुई गाड़ी को देखते रहे। फिर धीरे धीरे उनकी आंखें भी बंद हो गईं। उस खौफनाक मंजर को याद करते हुए सुभाष जी बताते बताते अचानक ही चुप हो गए, शरीर में कमकपी सी दौड़ गई। आज भी उस दिल दहला देने वाले हादसे को याद करते हुए वो कांप उठे, चेहरे पर दर्द और खौफ के मिले जुले भाव उभर आए। हालांकि आरवी भी कुछ डर गई और उसकी आंखों में भी खौफ और दर्द छलकने लगा था, पर सुनने और फेस करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। इस वक्त सुभाष जी की दशा आरवी से खराब थी, क्योंकि उन्होंने वो मंजर अपनी आंखों से न सिर्फ देखा था बल्कि उनके साथ ही सब हुआ था। टू बी कंटिन्यूड।